بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کے آغاز میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کا الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ایک طریقہ کار رہے۔ آپ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے درس سیاہ ستہ میں جس حدیث مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، وہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیزیں پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو ایک اہم چیز کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ اگر ہم اس پہ غور کریں تو اس حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، اپنے دلی جذبات دوسرے مسلمان کے لیے اسے کیسے رکھنے چاہیے، اپنے آپ کو دوسرے مسلمانوں کا خیرخواہ کیسے بنانا چاہیے، تو اس حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر ترین الفاظ میں، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جامع الفاظ میں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو جو پیغام ہدایت ارشاد فرما رہے ہیں، شارحین حدیث کے کلمات کی روشنی میں ہم اس کی کچھ وضاحت سنیں گے اور اس حدیث مبارکہ پر مضبوطی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ عمل کر کے اپنے ایمان کو کامل بنانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اپنی امت سے جو چاہتے ہیں، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امتی کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خواہش کو پورا کریں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا، تو اس طرح کی جہاں کہیں بھی احادیث کریمہ میں لا یؤمنو کے الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں تو وہاں مراد اصل ایمان کی نفی نہیں ہوتی کہ آدمی مومن ہی نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو لا یؤمنو احدکم، اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کمال ایمان کو نہیں پہنچ سکتا، تم میں سے کسی کا بھی ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کے مختلف شعبہ جات ہیں، دین اسلام हमारा ईमान मुख्तलिफ खसलतों का हामिल है। तो एक आदमी दीन इस्लाम की वो तमाम खसलतों को जब पूरा कर लेता है तो उसके ईमान में कमाल पैदा हो जाता है। जैसे कि हदीस मुबारक में भी फरमाया गया कि ईमान के 60 से कुछ जायद या 70 से कुछ जायद शोबा जात, और उनमें से एक को जिक्र करते हुए फरमाया कि हया भी ईमान की एक अजीम और बड़ी शाख है। गोया के ईमान के तकाजे ये हैं कि आदमी बाहया हो। तो इसी तरह ईमान के तकाजों में से एक अहम तकाजा यह है कि आदमी अपने भाई के लिए, इसी तरह एक रिवायत में पड़ोसी का भी जिक्र है तो अपने पड़ोसी के लिए, इसी तरह एक रिवायत में अन्नास मजकूर है, यानी जिन जिन लोगों से इसका ताल्लुक कायम होता है तो उन तमाम लोगों के लिए उन बातों को पसंद करे जो ये अपनी जात के लिए पसंद करता है। तो दीन इस्लाम के खूबियों में से और खसलतों में से एक खसलत ये भी है। तो आदमी को चाहिए कि दीन इस्लाम की तमाम खसलतें अपने अंदर पैदा करें, और मिन जुमला उन खसलतों में से एक अच्छी खूबी और खसलत ये भी अपनाए कि लोगों का खैर खा बन जाए। दूसरी बात जो शारहीन हदीस ने इस हदीस मुबारका के तहत बयान फरमाई है कि जो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हत्ता युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही, कि ये अपने भाई के लिए वही बात पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। तो इसके तहत शारहीन हदीस फरमाते हैं कि यहाँ जो पसंद है, यानी अपने लिए जो पसंद करता है अपने भाई के लिए भी वही पसंद करे, तो यहाँ पसंद करने के दो दर्जात हैं। एक दर्जा वजूब के दर्जे में है और एक सूरत इस्तेहबाब के दर्जे में है। वजूबी दर्जे की सूरत यह है कि जिस तरह ये अपने आप को फराइज का पाबंद समझना पसंद करता है कि ये नमाज पाबंदी से पढ़ता है, ज़कात की अदायगी वक्त पर कर देता है, माह रमजान मुबारक के रोजे रखता है, हज की फर्जियत होने पर हज अदा करता है, अलगरज जो जो शरीयत मुतारा ने जिन जिन कामों का ऐसे पाबंद किया है बहुस्न खूबी उसको अदा करने की कोशिश करता है, जिन कामों से शरीयत ने मना किया है उन कामों से अपने आप को बचाता है। तो इसी तरह इस मुसलमान को भी चाहिए कि अपने दीगर मुसलमानों के लिए, अपने दीगर भाइयों के लिए इसी बात को पसंद करे कि वो भी नमाज के पाबंद हों, वो भी रोजे के पाबंद हों, वो भी गुनाहों से इज्तिनाब करने वाले बन जाएं। अलगरस यहाँ मोहब्बत का मतलब क्या होगा, पसंद करने का माना क्या होगा, कि जो शरीयत मुतहरा के अहकाम हैं, करने वाले काम हैं, वो खुद भी करें और उन कामों की अदायगी दूसरे मुसलमान भी करने वाले बन जाएं, इस बात को वो पसंद करें, गुनाहों से खुद भी बचें और इस बात को भी पसंद करें कि मेरे अहलो अयाल, मेरे आस पड़ोस में रहने वाले मुसलमान, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त अहबाब रिश्तेदार, ये भी गुनाहों से इज्तिनाब करने वाले बन जाएं। तो ये पसंद ये वाजिब के दर्जे में है। और एक पसंद है दुनियावी मामलात में, कि जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरा रोजगार अच्छा हो और मैं अच्छी जगह जॉब करूँ, और इसी तरह मेरा घर ऐसा कुशादा होना चाहिए और मेरा कारोबार इतना वसी होना चाहिए, मैं ऐसे कपड़े पहनूं, तो ये जो दुनियावी मामलात के जो काम हैं तो इनमें भी ये बेहतर है कि आदमी अपने भाइयों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने मुतालिकीन जो लोग हैं उनके लिए भी इसी तरह की चीज़ें पसंद करें। जिस तरह की चीज़ें अपने लिए दुनियावी एतबार से नागवार समझता है तो दूसरों का भी इस तरह के मामलात में उसको ख्याल रखना चाहिए, दूसरों के लिए भी ये एहसास अपने अंदर पैदा करें। गोया के इस हदीस मुबारका में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अपनी उम्मत के दिलों को दीगर मुसलमानों के लिए, अपने आस पड़ोस में रहने वाले, हमसाए में रहने वाले लोगों के लिए, अपने मुतालिकीन जो लोग होते हैं उनके लिए दिलों को साफ सुथरा रखने की तरजीब इरशाद फरमा रहे हैं कि एक मुसलमान को चाहिए कि अपने दिल से हसद को निकाल दे, अपने दिल से कीने को निकाल दे, दिल को मुसलमानों के लिए जज्बे इसार से सरशार करे, और मुसलमानों का सही मानों में एक मुसलमान को खैरखा होना चाहिए। ये ना हो कि जो चीज अपने लिए पसंद करता है अपने भाइयों के लिए वो चीज पसंद नहीं करता। तो ये गोया दो रंगी, ये दो तरफा अमल, ये दो रुखा होना, ये शरीयत इस्लामिया को पसंद नहीं है। इसकी मिसाल ये ले लें, जैसे कुरआने पाक में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, वैलुल लिल मुतफ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून। तो इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व ताला ने डंडी मारने वालों को, लोगों से लेन देन करते वक्त उनके हक कम देने वालों की मजम्मत को बयान फरमाया कि तबाही है डंडी मारने वालों के लिए कि जब लोगों से लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। अल्लदीना इदक तालू अलन नास, कि जब लोगों से लेने का मरहला आता है, यस्तौफून तो पूरा पूरा लेते हैं, वइदा कालूहुम औ वज़नूहुम युख्सिरून, और जब देने का मामला आता है तो फिर लोगों को जब उनका कोई चीज माप कर देनी होती है, तोल कर देनी होती है, तो उसमें कमी करते हैं। ये अपने और दूसरों के लिए जो एहसास हैं ये मुख्तलिफ नहीं होने चाहिए। एक मुसलमान जिस तरह इस बात को पसंद करता है कि कोई मुझे धोखा ना दे, जब मैं अगर किसी से 5 किलो कोई चीज खरीद रहा हूं तो उसमें 1 ग्राम की भी कमी ना करे, तो जिस तरह मुझे ये पसंद है कि मेरे साथ धोखा ना हो, फरेब ना हो, दगा ना हो, मुझे माल कम ना दिया जाए, तो इसी तरह एक मुसलमान के लिए ये भी लाजिम है कि जब उस पर लोगों का हक आता हो तो उन हुकूक की अदायगी करने में किसी किस्म की डंडी ना मारे, मिलावट ना करे, धोखा ना दे। बल्कि हमें तो दीन इस्लाम ये तरगीब दिलाता है कि हकदार को जब उसका हक अदा किया जा रहा हो तो उससे कुछ ना कुछ ज्यादा ही दे दे। मसलन अगर आपने 1 लाख रुपए किसी से कर्जा लिया, आप पर जो लाजिम है वो 1 लाख रुपए ही की अदायगी कर्ज की वापसी में लाजिम होगा, लेकिन तरगीब यह है कि आदमी जब हक की अदायगी कर रहा हो तो कुछ ज्यादा दे। तो ये हमें तरगीब दिलाई गई है। तो अब एक मुसलमान को चाहिए कि अपने और दूसरे मुसलमानों के मामलात में फर्क ना करे कि मेरे लिए तो ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब मैं दूसरे के साथ ताल्लुक कायम करूं तो मैं वहां पर कोताही बरत रहा हूं और वहां उनके साथ अच्छा बिहेवियर इख्तियार ना कर रहा हूं, तो दीन इस्लाम इन चीजों से मना फरमाता है। अब इन चीजों की कुछ मिसालें मैं आपके सामने अर्ज करूंगा कि जहां पर हम जो अपने लिए चाहें वही हमें दूसरों के लिए भी चाहना चाहिए। इसकी मिसाल ले लें, मिसाल के तौर पे एक आदमी है और वो आदमी किसी ऐसे मकाम पर खड़ा है कि जहां पर पानी है, स्टॉप ही ऐसा है, तो अब वहां पर जब वो बस का इंतजार कर रहा है तो हर आदमी चाहता है कि कीचड़ के पास से अगर कोई अपनी सवारी लेकर गुजरे तो मेरे कपड़े खराब ना हो। अब जो बाइक पे है और वो तेजी के साथ भगाता हुआ गाड़ी चला जाता है, लोगों के कपड़े खराब कर देता है, तो अब ये आदमी खुद सोचे, क्या ये स्टॉप पे खड़ा होता और दूसरा कोई इसी तरह तेज रफ्तारी के साथ वहां से अपनी बाइक दौड़ाता हुआ जाता और इसके ऊपर छींटे आती, तो क्या इसको पसंद होता? यकीनन इसे ये बात पसंद ना होती कि इसके कपड़ों पर किसी भी किस्म की गंदगी की या नापाकी की छींटे आए। तो जब मैं अपने लिए पसंद नहीं करता, तो जब ऐसे मकाम से मेरी गाड़ी का गुजर हो रहा हो तो मुझे चाहिए कि मैं भी अपनी गाड़ी को स्लो कर, आहिस्ता कर, ताकि इस मकाम से, इस पानी वाली जगह से, कीचड़ वाली जगह से जब मैं गुजर रहा हूँ तो मेरी गाड़ी से उड़कर कोई छींट किसी मुसलमान के, किसी शख्स के कपड़ों को आलूदा ना करे। इसकी और मिसालें मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मैं जब किसी से सौदा करूँ, कोई माल खरीदूँ, तो वो आदमी मुझसे, जाहिर बात है कोई भी शख्स बाजार में अगर कोई आइटम बेचने के लिए लाता है तो जितने में खरीदा उतने में तो नहीं फरोख्त करेगा, वो कुछ ना कुछ नफा लेगा। तो मेरी ख्वाहिश, मैं कस्टमर हूँ, मैं खरीदार हूँ, तो मेरी ख्वाहिश क्या होती है कि जब मैं किसी से माल खरीदूँ तो बेचने वाला एक माकूल नफा रख कर मुझे अपनी चीज़ बेच दे। तो अब जिस तरह मेरी ख्वाहिश है कि माकूल नफा और बेचने वाला ले, तो जब मैं कोई माल फरोख कर रहा हूँ तो उस वक्त मुझे भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मैं भी मुसलमानों को जब कोई माल फरोख करूँ तो उसमें माकूल नफा रखकर ही उनको बेचूं। तो इस तरह मुसलमानों की खैरखाही की एक सूरत ये होगी। अगर हम अपने घर की तामीर कर रहे होते हैं तो घर की तामीर करने की सूरत में बाज़ औक़ात बजरी, सीमेंट, ईंटें, ब्लॉक और इस तरह का घर की तामीर से ताल्लुक रखने वाले जो साजो सामान है, बाज लोग उनको बहुत ज्यादा फैला देते हैं। उस फैलाने का नतीजा क्या होता है कि लोगों की गुजरगाहों में फर्क पड़ता है, लोगों की आमदोरफ्त में फर्क पड़ता है। तो जिस तरह मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरा पड़ोसी या मेरी गली मोहल्ले में अगर कहीं कोई तामीराती काम हो रहे हैं तो उस आदमी को चाहिए कि फैलावा ना करे, मेरी गाड़ी को अंदर आने जाने में तकलीफ ना हो। तो इसी तरह हमें भी गौर करना चाहिए कि जब हम अपने मकान तामीर कर रहे हों तो उस मौके पर हमें भी इन चीज़ों को समेट के रखना चाहिए, ताकि आम आमदो रफ्त करने वाले मुसलमानों को उस गली मोहल्ले में अगर कोई सब्जी वाले, फ्रूट वाले और दीगर फेरी लगाने वाले, उनके गुजरने में उनको किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना हो। तो एक मुसलमान को चाहिए कि जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने दूसरे मुसलमानों के लिए पसंद करे। इसी तरह अगर आदमी से गलती हो जाती है तो गलती होने पर हर आदमी ये चाहता है कि मैं जिसका हक मुझसे अगर तलफ हुआ है या मेरी तरफ से जिसकी दिल आजारी हुई है, मैं उससे अगर मुआफ़ी मांगूँ तो वो मुझे मुआफ़ कर दे, अल्लाह की रिजा के लिए माफ कर दे। तो हर आदमी की ख्वाहिश होती है। तो इसी तरह अगर कोई मुसलमान हमसे हमारी हक तलफी होने की सूरत में मुआफी का तलबगार हो तो हमें भी चाहिए कि खुश दिली के साथ उसको मुआफ कर दें, और अल्लाह तबारक व ताला की रिजा के पेश नजर जब हम इस तरह एक दूसरे को मुआफ करेंगे तो इससे मुआशरे में एक अच्छा तासुर पैदा होता है, और वो मुसलमान जिसको हम मुआफ कर देते हैं तो वो मुसलमान हमसे पहले से ज्यादा मोहब्बत करने लगता है, और जो अल्लाह तबारक व ताले के लिए आजजी करता है अल्लाह ताला उसको बुलंदी नसीब फरमाता है। तो अब यह है कि जो चीज़ हम अपने लिए पसंद कर रहे हैं तो वही हमें दूसरों के लिए भी पसंद करनी चाहिए। इसी तरीके से अगर दावतों का अहतमाम होता है तो दावत के अहतमाम में जब खाना खुलता है और लोग एकदम खाने के टेबल पे रश लगा देते हैं तो उस मौके पर बाज औकात क्या होता है, हमें ये बात पसंद नहीं होती कि एक आदमी जो है वो बोटियां कोरमे से या बिरयानी से वो बोटियां निकाले जा रहा है, या इसी तरह मीठा आइटम रखा होता है तो वो खूब उसने प्लेट भर ली, और जब हमारे ये बारी आई तो वो थाली खाली हो गया। तो हमें ये बात पसंद नहीं होती कि हम लाइन में लगे और जब खाने तक पहुंचे तो वो सारी उसकी रौनकें तो खत्म हो चुकी हैं। तो ये बात हमें गवारा नहीं है। जब हमें ये बात गवारा नहीं है तो अब गौर करें कि जब हम खाने तक पहले पहुंच गए और पीछे लोग खड़े हैं तो हमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो बात मुझे पसंद नहीं थी तो वो बात दूसरे मुसलमानों के लिए भी मैं पसंद ना करूं। यानी अब जब मैं खाना उतना ही निकालूं जितना खाना है, बल्कि होना ये चाहिए कि अगर थाल में कुछ बोटियां मौजूद भी हों तो उन बोटियों को अपने बाद में आने वाले भाई के लिए इशार करते हुए छोड़ दें। आप थोड़ा सा सालन ले लें, आप थोड़े से बिरयानी के चावल ज्यादा कर लें, भले बोटियां छोड़ दें। तो कोई इस तरह के मामलात को अगर हम करेंगे, एक दूसरे की खैरख्वाही जब हमारे दिलों में बैठ जाएगी तो हमें हर तरह से अपने मुसलमान भाई का खैरख्वाह बन जाऊंगा, और हर आदमी की यही सोच होने लग जाएगी कि मुझे अपने भाई के लिए, अपने पड़ोसी के लिए और अपने मुतालिकिन अफराद के लिए वही चाहना है, वही पसंद करना है जो मैं अपने साथ होना पसंद करता हूँ। तो इस तरह क्या होगा, एक दूसरे का अदब एहतराम भी बाकी रहेगा और हमारे मुआशरे में अमनो सलामती अल्हम्दुलिल्लाह फैलना शुरू हो जाएगी। इसकी बीसियों सूरतें बन सकती हैं। मसलन बाज औकात एक आदमी एक मकाम से दूसरे मकाम तक सफर कर रहा है। इस सफर का दौरानिया 1 घंटा भी हो सकता है, 1.5 घंटा भी हो सकता है। अब होता क्या है कि बाज लोगों की आदत होती है कि उनको अगर सीट मिल गई, अब उन्होंने अगर 50 रुपये किराया दिया है तो उसी 50 रुपये में एक मुसलमान वो भी है कि जो डंडा पकड़ के खड़ा हुआ है, ये आदमी बैठा हुआ है। तो अब ये सोचे कि अगर मैं किसकी जगह खड़ा हुआ होता और ये आदमी बैठा होता, तो मेरी ख्वाहिश ये होती कि यार 1 घंटे इसको भी वहीं जाना है, मुझे भी वहीं जाना है, तो थोड़ी देर के लिए मुझे बैठने थे। तो ये ख्वाहिश दिल में पैदा होती है कि दोनों का सफर एक है, किराया भी दोनों ने बराबर का दिया है, लेकिन एक सीट पे बैठा है और एक खड़े होकर जा रहा है। तो जिस खड़े होने वाले की ख्वाहिश है कि मुझे थोड़ी देर बैठने का मौका मिल जाए, तो इसी तरह हमें भी ये बात दूसरे मुसलमानों के लिए पसंद करनी चाहिए कि अगर हमारा और दूसरे मुसलमान का सफर का दौरानिया यकसा है, तो फिर हमें थोड़ी देर बैठने के बाद, आधा रास्ता बैठने के बाद, अब उस मुसलमान को रिक्वेस्ट करें कि अब आप भी बैठ जाएं, अब मैं खड़ा हो जाता हूं, ताकि हमारा यह सफर एक दूसरे की खैरख्वाही के साथ पूरा हो जाए। बल्कि सफर के दौरान हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि जब सफर के दौरान हमारे कुछ उम्र रसीदा अफराद या कोई बीमार हैं, तो ऐसे अफराद अगर बस में चढ़ जाते हैं और उनको सीट नहीं मिल रही होती, तो इसार करें, कुर्बानी दें और बुजुर्गों का एहतराम करते हुए इनको अपनी सीट पर बैठने का मौका दें कि जो आज किसी उम्र रसीदा मुसलमान के साथ खैरख्वाही करते हुए उसका अदब और एहतराम करता है, उसके लिए मदद करता है, उसकी ताजिम करता है, तो कल को जब ये बुढ़ापे तक पहुंचेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोग पैदा फरमा देगा जो इसके लिए ताजिम कर रहे होंगे, इसको एहतराम दे रहे होंगे, इसकी खैरख्वाही कर रहे होंगे। तो इस हदीस मुबारक पे अगर हम अमल करने वाले बन जाएं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही, कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक कमाले ईमान से मुत्तसिब नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए वही बात पसंद ना करे जो खुद अपने लिए पसंद करता है। तो जब अगर हम इस हदीस मुबारक पे अमल करने की कोशिश करेंगे, अमल करने वाले बन जाएंगे, हर तरफ हर मुसलमान, एक कंपनी में काम करने वाले सारे मुसलमान, इसी तरह एक घर में रहने वाली फैमिली मेम्बरान, इसी तरह मस्जिद के अंदर आकर नमाज पढ़ने वाले मुसलमान, ये भी अगर एक दूसरे की खैर ख्वाही करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छाई का बर्ताव करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मुआशरा अमनो सलामती का गहवारा बन जाएगा, हर तरफ अमनो अमान कायम हो जाएगा। तो ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन में से ये फरमाने आलीशान ऐसा है कि अगर हम इस पर अमल करने वाले बन जाएं, तो हमारे बहुत सारे मामलात अच्छे हो जाएं, बहुत सारे मामलात हमारे बेहतर हो जाएंगे, और हम गोया के अपनी जात से दूसरे मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना भी छोड़ देंगे, और उससे बचने का हमारा जहन बन जाएगा कि जो बात इस हदीस मुबारक के तहत शारहीन हदीस ने इसको भी बयान फरमाया है कि इस हदीस मुबारक में जो कमाले ईमान का तकाजा यह है कि मैं अपने भाई के लिए वही पसंद करूं जो अपने लिए पसंद करूं, तो इसी का तकाजा यह है कि जो बात मैं अपने लिए पसंद नहीं करता, जो बात मुझे नागवार गुजरती है, तो मैं अपने मुसलमान भाई के लिए भी उस बात को पसंद ना करूं, वो चीजें मैं छोड़ दूं। और हमारे बुजुर्गाने दीन इस तरह की बातों से इज्तिनाब किया करते थे जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने वाली हैं। हजरत सैयदना आहनफ बिन कैस रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया कि आपने हिल्म, बुर्दबारी, तहम्मुल मिजाजी किससे सीखी है? तो आप फरमाने लगे कि मैंने अपने आप से सीखी है। तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि आपने अपने आप से तहम्मुल मिजाजी सीखी हो। तो फरमाने लगे वो इस तरह के जब दूसरे का कोई अमल, कोई रद्दे अमल, कोई उसका काम, कोई उसकी बात मुझे नागवार गुजरती, तो मैंने अपना जहन ये बना लिया कि मैं भी वो काम नहीं करूंगा जो मुझे नागवार। तो अब जब जो चीज मुझे पसंद नहीं है कि मेरे साथ ऐसा सलूक किया जाए, तो फिर मैंने वो काम ही करना छोड़ दिए, तो इस तरह मेरे अंदर तहमुल मिजाजी और बुर्दबारी पैदा हो गई। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें भी चाहिए कि अपने आप को उन तमाम तर बुरे कामों से बचा लें, वो तमाम तर बुरे काम करना छोड़ दें कि जो काम हमें अपने लिए पसंद ना हो कि दूसरा हमारे साथ करे, तो हमें भी दूसरे के साथ वो काम करना नहीं चाहिए, हमें भी वही काम दूसरों के लिए पसंद करना चाहिए जो काम हमें अपने लिए पसंद हो, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें हदीस मुबारका के नूर से हमारी जिंदगी को मुनव्वर फरमाए, इस आलम को रोशन और मुनव्वर फरमाए, और हमें अहादीस करीमा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम।
बहुक्मे अहादीस ईमान ये है कि हो सबसे बढ़कर मोहब्बत नबी की।